समय सार है और इस समय सार की 194 नंबर की हम गाथा देखते आ रहे हैं। वहां पर ये बात हो रही थी कि जो मिथ्या दृष्टि है वह जो पर पदार्थों को भोगता है तब उसके नए कर्मों का बंध होता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वह पर पदार्थों को जब भोगता है तब उसे नए कर्मों का बंध नहीं होता। तो हमें प्रथम यानी बहुत स्थूल दृष्टि से हम उसके तरफ देखें तो ऐसा मन में विचार आता है कि भैया ऐसी पार्शियलिटी क्यों हो रही है, सम्यक दृष्टि के लिए जुदा कायदा और मिथ्या दृष्टि के लिए जुदा कायदा। कायदा तो दोनों के लिए एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, क्योंकि जिस समय वह जीव कौन सा मिथ्या दृष्टि जीव पर पदार्थों का भोग कर रहा हो उस समय मैं उसका भोग करता हूँ और वो अच्छा है, ऐसे उसके राग की वहां उत्पत्ति होती रह रही और उस नए राग के कारण उसको नया बंध हो रहा है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है वह सम्यक है और पर पदार्थों से मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन अपने आत्मा में स्थिरता न करने के कारण तो कहता है कि वह पर पदार्थों को भोगता है लेकिन उस भोगने की उसकी इच्छा नहीं है, भोगने के राग का राग नहीं है, रुचि नहीं है, फिर भी वह भोगता है तो वह नए कर्म नहीं बनते क्योंकि उसके वैसे प्रकार के राग नहीं है। इसलिए कहा है कि वह निर्जरा का कारण है।
बंध तो रुकता है, वो तो संवर में आ ही गया, यहाँ तो पुराने कर्मों की निर्जरा भी होती है, प्रकरण भी इसमें और बढ़ा दिया है।
अब यहाँ ये हम 194 का जो भावार्थ है वो 29 नंबर पृष्ठ पर हम शुरू करते हैं। परद्रव्य भोगवता कर्मणा उदयना निमित्ते जीव ने सुखरूप अथवा दुखरूप भाव नियमती था उत्पन्न थाय छे। क्या कह रहे देखो, सुखरूप के दुखरूप जे अवस्था थाय छे ते तो पोतानी पर्याय पोताना अशुद्ध उपादान थी थाय छे। कर्मना उदयना निमित्ते ते थाय छे एम जे कहूं ए तो निमित्तनु ज्ञान करावा कहूं छे एम समझूं। यानी यहाँ क्या कह रहे हैं, ये हम कर्म को जरा बाजू रखते हैं तो जिस समय इस जीव की ये जो सुखरूप या दुखरूप अवस्था हो रही है उस समय वह अवस्था जीव की स्वयं के कारण से हो रही है। अब जब कोई कार्य होता है यानि उपादान कार्य हो रहा है तब वहाँ निमित्त कार्य कहो या निमित्त कारण भी होता है, तो वहाँ निमित्त कौन है, इसलिए कहते कि जो कर्म का उदय है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो सुखरूप या दुखरूप जो अवस्था होती है वो अपने स्वयं के उपादान से होती है तो वो जो उपादान से कार्य हो रहा है तब कर्म उसमें निमित्त है, ये बात यहां सिर्फ बता रहे हैं। कर्म से वो भाव हो रहे ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, आपका पूछना है कि अशुद्ध उपादान से सुखरूप और दुखरूप दोनों अवस्था हो रही है, यह तो पर पदार्थों से जो सुख मिलता है ऐसी जो इस जीव की भ्रांति है वो उसको सुखरूप मानता है। ये तो अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ जिसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि लौकिक सुख दुख जिसको हम मानते हैं, है तो दोनों ही दुख लेकिन उसमें कुछ सुखरूप हम मानते हैं ना, तो वो जो अवस्था है वो अशुद्ध उपादान है अपना स्वयं का, ये बात बताना है। हाँ साहब, हाँ ये बता रहे हैं कि पर में एकत्व बुद्धि के कारण से ऐसा हो रहा है, इसलिए तो वहां बात हो रही ना कि मिथ्या दृष्टि की बात, तो उसी की बात होगी
मिथ्या दृष्टि। पर यहाँ जो है ना उदयना निमित्ते जूने सुखरूप दुखरूप भाव, तो सम्यक दृष्टि को भी कहेंगे। भाव निर्जरा का प्रकरण चल रहा है, उसके तो कोई एकत्व बुद्धि वाली बात नहीं है, क्योंकि समय दर्शन होने के बाद भी ये सुखरूप दुखरूप भाव की जो बात आती है तो कौन से कर्म के निमित्त से होते हैं? वेदनी की बात, उसमें मोहनीय जुड़ा हो तो उसमें नया बंदर वो जो कुछ चलेगा है ना, वो कल्पना से वो ज्यादा। परंतु अभी मिथ्या समय दृष्टि को तो सुख दुख रूप कल्पना नहीं, परंतु फिर भी यथायोग्य उसके जो साता असाता के उदय में, क्योंकि मोह भी अभी पूरा गया नहीं है उसका, तो उसको वहां वहां सुख और दुख रूप वेदन चल रहा है।
यहाँ तो बिल्कुल द्रव्यान योग में स्थूल बात करेंगे, वहां करणानियों की सूक्ष्मता हमने जानने के लिए है, यहाँ हम नहीं लगाएंगे। यहाँ तो कहेंगे कि वो सम्यक भी को तो बंद ही नहीं होता है, और वहां कहेंगे जितने प्रमाण में राग है उतना होगा, दोनों ही सही है वो।
यानी यहाँ तो अभी जो निर्जरा की बात चल रही है, पहले हमने द्रव्य निर्जरा का स्वरूप देखा था, तो वहां तो जो कर्मों का उदय है वो उदय होके निकल जा रहा है, और उसके उदय में नया बंध नहीं हो रहा है वो बात है, इसलिए उसको निर्जरा कही थी, वो तो द्रव्य निर्जरा की बात हुई। अब कहते हैं कि कर्म के उदय में जितना उसका सुखरूप दुखरूप परिणाम होना है वो परिणाम हो रहा है, होते हुए नया बंध नहीं होता है, इसलिए वो भावों की भी निर्जरा हो रही है। ये भाव निर्जरा की बात यहाँ उठा रहे कि उसका सुखरूप दुखरूप जो कुछ वेदन होना है, यानी वो कर्म तो निकल ही जा रहे हैं, साता असाता की जो कुछ है फल दे के निकल जा रहे हैं, और यहाँ उसके वैसे भाव भी हो रहे वो भी निकल जा रहे ऐसी बात है, परंतु वो नया तो बंद होता नहीं और पुराना, क्योंकि वो तो भोगने के कारण निर्जरा नहीं हो रही है, परंतु उस काल में उसके वो राग आदि है नहीं है और वो भाव होके निकल जा रहे हैं, इसलिए उसको निर्जरा कहेंगे। ये बात आएगी अभी और स्पष्ट होगी।
देखिए अभी आगे कह रहे हैं थर्ड पैराग्राफ, मिथ्या दृष्टि ने रागादिक ने लीधे ते भाव आगामी बंद करीने निर्जरे छे, तेथी तेने निर्जर्यो कही शकातो नथी, माटे मिथ्या दृष्टि ने परद्रव्य भोगवता बंध ज थाय छे। क्योंकि उसके नए राग के भाव चल रहे ना, शुं कहूं के मिथ्या दृष्टि ने रागनी रुचि छे अने सम्यक दृष्टि ने नथी, ये दोनों में तफावत है। प्रेम छे तेने राग द्वेष मोहना परिणाम हयात छे, मोहना परिणाम ने मिथ्यात्व भी चालू है ये कह रहे हैं, तेथी कर्मना उदयना निमित्ते जे भोगनो भाव थाय छे सुख दुखना परिणाम थाय छे ते आगामी बंद करीने निर्जरे छे, अज्ञानी ने जे सुख दुखनु वेदन थाय छे ते माते स्वामीपने प्रवर्ततो होवाथी तेने राग द्वेष थाय छे અને તેથી તેને નવો બંધ થાય છે, તે કારણે નિર્જર્યો હોવા છતાં તે નિર્જર્યો કહી શકાતો નથી, કેમકે નયા કર્મ બંધ હો રહે ને ઇસલે। હા
દેખો ઉદય મે આના હી નિર્જરા હે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા ક્યા હો રહા હે, ઉદય તો હો રહા હે યાની નિર્જરા તો હો રહી હે, સાથ સાથ બંધ ભી હો રહા હે, તો યે નહી કે બરાબર હે। समय दृष्टि का क्या होगा, वो भी उदय होकर निर्जरा हो रही है उसकी, परंतु नया बंध नहीं है, तो उसकी वो निर्जरा ही है ऐसा कहेंगे। वो भाव पर भी घटित किया और द्रव्य पर भी घटित किया।
माटे मिथ्या दृष्टि ने परद्रव्य भोगवता बंधज थाय छे निर्जरा नहीं। हवे कहे छे सम्यक दृष्टि ने रागादिक नहीं हुआ थी आगामी बंध कर्या विनाज ते भाव निर्जरी जाय छे तेथी तेने निर्जर्य कही शकाय छे। माटे सम्यक दृष्टि ने परद्रव्य भोगवता निर्जराज थाय छे आ रीते सम्यक दृष्टि ने भाव निर्जरा थाय छे। शू कीधु आ के धर्मी जीवनी दृष्टि आनंदना नाथ भगवान आत्मा उपर छे तेथी कर्मना उदयना निमित्ते खरी कर्मना निमित्ते जरी सुख दुखनु वेदन एक समय पूरतु थाय छे पण तेने रागद्वेष मोहनो अभाव छे। यहाँ रागद्वेष मोहनो अभाव कहने से मोह कहने से तो मिथ्यात्व हम लेंगे और रागद्वेष कहने से अनंतानुबंधी मिनिमम लेना पड़े। तो ये रागद्वेष यानी अनंतानुबंधी यानी हम दूसरी भाषा में कहें तो आंशिक राग द्वेष का त्याग और पूर्ण बने मिथ्यात्व का त्याग। तो कहते हैं तेने राग द्वेष मोहनो अभाव छे तेथी ते वेदननो भाव बंद कर्या विनाश निर्जरी जाय छे तेथी ते खरेखर निर्जरियो छे एम कहेवामां आवे छे। अज्ञानी ने पण ते भाव निर्जरियो तो छे ज पण ते नवो बंद करीने निर्जरियो छे तेथी निर्जरियो कहेवातो नथी। ज्यारे ज्ञानी ने तेज भाव बंद कर्या विना निर्जरी जाय छे तेथी तेने खरेखर ते भावनी निर्जरा थई गई एम कहेवाय छे। आवी वात छे। प्रश्न पोते बोले छे एवुं प्रत्यक्ष देखाय छे अने कहे छे के आत्मा बोले नहीं आत्मा बोलतो नथी तो शुं भीत बोले छे? ये चालू विषय में तो ये नहीं निकलता है। कहां से निकला मुझे पता नहीं लग रहा। बापू तने खबर नथी भगवान आ जे आवाज निकले छे ते आई जे शब्द वर्गना ना परमाणु पड़िया छे तेनू परिणमन रूप कार्य छे। उज्ज्वला यहां क्या लिखा है आई जे वहां एक बात निकली थी देवलाली में आपको शायद नहीं मालूम होगा ये अंदर अंदर ही चल रही थी कि उज्ज्वला ने ऐसा बताया था कि यह जो आत्मा में कारमान वर्गणा है ये यानी अंदर यानी जहां आत्मा के प्रदेश है उसी क्षेत्र में कारमान वर्गणा पूर्णता है। तो ये कर्म रूप जो बने हैं वह तो कर्म है ही है और जो अन्य कारमान वर्गणा भी वहां होगी वो तो ठीक लेकिन जो कर्म जो है एक एक कर्म परमाणु के साथ अनंत विश्रसोपचय भी है यानी अनंत अनंत वहां तो जो कारमाण वर्गणा शरीर से अपने सॉरी आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है वहां पर जो कर्म बने हैं वो तो हमारे मेहमान है और उनके विश्रसोपचय तो वो मेहमानों के मेहमान है जीव से कोई संबंध नहीं है ऐसे अनेक हैं। तो वहां के जो परमाणु है विश्रसोपचय रूप वे कर्म रूप बनते हैं। तो वहां पर किसी ने अन्य ने ऐसा वहां अपना मत प्रदर्शित किया कि पूर्ण लोकाकाश में कारमान वर्गना खचोखच भरी है तो कहीं से भी वहां के कर्म के परमाणु यहां आकर कर्म रूप होते हैं वहां के होने चाहिए ऐसा कुछ नहीं ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन चला। तो यहां पर ये बात निकलती है देखो क्या कह रहे हैं आज ये आवाज निकले छे ते अहीं जे शब्द वर्गना ना परमाणु पड़िया छे यानी यहां हम बैठे हैं और अमेरिका के भाषा वर्गना के परमाणु आके यहां शब्द रूप होवे ऐसा नहीं क्योंकि जहां आत्मा के प्रदेश है वहां तो अनंत अनंत पुद्गल परमाणु भी है तो उसमें सारे ही पांच वर्गणाएं जो है जिसको हम कहेंगे वो भी वहां मौजूद है और वही शब्द रूप परिणमती है। देखो इसको मैं आपको उदाहरण देता हूं अभी मैंने कहां पढ़ा था मुझे याद नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि वहां पर बिजली चमकी तो अपने से तो काफी दूर है, हा? तो वह जो बिजली चमकी उसके साथ साथ आवाज भी आया, तो मेघों का आवाज गड़गड़ाहट हुआ, तो वहां के जो परमाणु थे उसके बगल के परमाणु, उसके बगल के परमाणु, ऐसे करते 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 ये कान के नजदीक के जो परमाणु है वह शब्द रूप आवाज रूप होते हैं, तब हमें सुनाई देते हैं। ख्याल में है? वहां नहीं आते तो कहां कहां जाएंगे? यहां हजार लोग बैठे, अरे लाखों है, करोड़ों है बंबई में, सबने सुने हैं कि नहीं? लेकिन वो परमाणु कहां, एक परमाणु कहां जाएगा अन्य जगह? तो उसके बगल के परमाणु उस रूप परिणमित होते 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 यहां तक आता है। वैसे सुगंध भी है,
ये अभी मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ ना, वो आप चेकअप कर रहे थे उसमें से आई बात।
मैंने कहा ना, कहीं पढ़ा था मैंने करके। तो अभी गंध या सुगंध है मान लो, तो अभी यहाँ से कोई व्यक्ति जाती होगी तो उसने वो क्या परफ्यूम लगाया है, तो वो परफ्यूम तो वहां का जो परमाणु है उसके बगल के जो कोई वर्गणाएं हैं तो वो उस रूप परिणमित होते होते अपने नाक के नजदीक के जो परमाणु है वो उस रूप परिणमित होते और अपने को वहां उसका गंध ख्याल में आता है।
वो आता है ना कि प्राप्त होकर, जैसे इन मन और नेत्र वो दूर से पदार्थों को यानी जानने का कार्य होता है, परंतु अन्य इंद्रियों के वो संपर्क में आते हैं तो हम कहते हैं अरे हमने तो गंध तो दूर से सूंघा है उसको, वो तो इतने दूर था फिर भी हमको वो उसका गंध आ गया, ऐसे है ना। अरे वो तो आवाज तो वो बहुत वहां दूर हो रही थी और हमने सुनी, तो ये सुनी तो कहते तो है ऐसा, हमने दूर का सुना और ऐसा कहते भी है कि इतनी इतनी रेंज तक ये सुन सकता है, फिर भी वो जब सुनता है तो बीच वाले स्कंद से स्कंद होते 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 अपने कान के नजदीक वाले स्कंद जब उस रूप परिणमित होते और वो अथड़ते अपने कान के साथ तब उसका वो सुनाई देता है। वैसे गंध में भी समझना, स्पर्श में भी समझना, ये हर एक अन्य चार इंद्रियों में।
यहाँ जो कहते हैं आई जे शब्द वर्गणा, तो ये हम जो मतलब उज्ज्वला ने जो बात कही थी उसके पुष्टि करने वाली ये बात है। मैं उसको आई वॉन्टेड टू नोटिफाई हर कि भाई ये देखो यहाँ लिखा है करके। यहाँ से जो आवाज निकल रही है मान लो यहाँ के जो शब्द भाषा वर्गणा जो है जो शब्द रूप परिणमित हुई है तो उसके बगल वाले जो कोई भाषा वर्गण है वो शब्द रूप हो गए। ऐसे करते 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 वहां के आपके कान के नजदीकी जो भाषा वर्गणाएं हैं वह शब्द रूप परिणमेगी तो आवाज सुनोगे। अब उसमें ये भी बात लेनी पड़ेगी कि कान के जो सुनने की कैपेसिटी है वो कम अधिक हो सकती है वगैरह वगैरह, वो अलग बात है। जैसा कभी यहां कोई बहन बैठती है एकदम आस्ते बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता है और उज्ज्वला को सुनाई देता है, कोई और तीसरा बहरा होगा तो उसको बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, तो उसके वो क्षेत्र वो ज्ञान का वो बात जुदी है।
इस साइंस में भी प्रूव है ना, ये ध्वनि लहरी कैच करते हैं यानी वो वेवलेंथ, व्हाट डज इट मीन कि वो तो कुछ ट्रैवल होती है ना और फिर उसका जो कुछ रिसेप्शन विशिष्ट यंत्रों के द्वारा उसको हम कैच करते हैं, तो ये ध्वनि लहरी वहां तक आ जाए ना तो उसका 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 परिणमन होता है। जैसे फोन पर हम सुनते तो क्या होता है, तो वहां विशिष्ट उसका ट्रांसफर होता है, फिर वो फिर दोबारा अपने भाषा रूप हो जाते हैं और फिर हमें सुनाई देते हैं। तो ये सारा निमित्त नैमित्तिक स्वरूप से वो बीच में वो सारे जो कोई स्कंदों का परिवर्तन है वो हो जाता है।
ये भी सीढ़ी पे तो अपन एकदम आराम से समझे, इतनी सी सीढ़ी मैटर इतना, वहां तो ऐसी बात निकली थी मैं जो कहती हूँ वो ये है, आपको जो है वो आप जानो हमको मालूम नहीं है, ऐसी बात हुई थी, उससे क्या लेना देना। लेकिन हम जो अपनी जो बात है हमने जो बताई है उसकी पुष्टियां हो रही है वही मैं उनको बता रहा हूं, और ऐसा ही होता है। देखो देखो आज ये आवाज निकले छे ते आई जे शब्द वर्गना ना परमाणु पड़िया छे तेनु परिणमन रूप कार्य छे, अरे आज ये होठ हले छे तेना कारणे आवाज निकले छे एम पण नथी, तो ते जीवनु कार्य तो केम होय। क्या कहना चाहते हैं, ये ओठ जो है ना वो तो पुद्गल है और भाषा जो है वो भी पुद्गल है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का कार्य नहीं करे, तो ये जीव उसका कार्य करे, ये कहां से बात निकाली आपने? वो तो अत्यंत दूसरा निराला द्रव्य है ना, वो तो पुद्गल 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 सब एक द्रव्य, एक जाति के।
यानी वहां तो आहार वर्गना है, जैसे अभी हमने ऐसे आवाज की है ना, तो क्या हुआ यहाँ के जो भाषा वर्गना के परमाणु है वो शब्द रूप से ध्वनि रूप से परिणमित हुए है, ये भले उसका अक्षरात्मक नहीं परंतु ये कोई आवाज तो है ना, ध्वनि है ना,
निरक्षर
तो, हाँ निरक्षरी हम कहेंगे इसको, तो ये उस आवाज रूप परिणमित हुए, तो ये यहाँ के परमाणु। अब ये जो पट्टी है, जो बोर्ड है, ये क्या है, ये तो आहार वर्गना है, वो स्कंधों का अथड़ाना हुआ एक दूसरे के साथ, और वहां पर स्थित जो भाषा वर्गना के परमाणु है वो भाषा रूप परिणमित हुए, वो तो भाषा वर्गना अलग है। और ये बीच वाले जो स्कंद है ना, अपना यहां से और आपके कान में इतना गैप है, और ये बीच वाले सारे परमाणु उस रूप होते 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 वो वहां पर जाके वो कानों से अथड़ा है, तो वो फिर वो हाँ भाषा रूप उसके जो कुछ हमें ज्ञान हुआ उसका।
क्योंकि देखो अनंत पुद्गल परमाणु है, वो अनंत काल से अभी मौजूद है, उन अनंत काल से उनकी परिणति हो रही है, तो उस परमाणु की उस रूप परिणति होनी वो उसका सहज कार्य है। और हम तो मानते नहीं नहीं हमने यहाँ आवाज की इसलिए वो परमाणु वहां परिणमित हुए, अरे जा वो तो उसका स्वयं का कार्य है।
देखो ये लाइट के भी अभी जब बिजली का इन्होंने उदाहरण दिया था, तो बिजली तो हमें जब चमकती है तो पहले चमकती है कि पहले आवाज आता है, आपने कुछ नोट किया है? चमकती है क्यों, क्यों दिखाई देती है और आवाज बाद में क्यों आती है?
लाइट ट्रेवल्स फास्टर,
तो आप ही कह रहे कि लाइट ट्रेवल्स, यानी वहां से बीच वाले परमाणु उस लाइट रूप परिणमित होते होते दिख रहे हैं।
भाई साहब कहते हैं साइंस में यही बताते हैं।
हाँ यही बताएं।
साइंस के, वही तो हम बता
मैं
रहे
साइंस की बात बता रही हूँ।
साइंस के आधार से भी ये बात प्रूव होती है। हाँ।
और आवाज का जो स्पीड है ट्रैवल करने का वो स्लो है। हाँ उसके फॉर्मूले भी हाँ। है कि लाइट के ट्रैवल करने की कितनी स्पीड है और आवाज की कितनी है, उसके द्वारा हम समुद्र की गहराई भी माप सकते हैं कि आवाज वो नीचे गया और नीचे अथड़ा के ऊपर आया तो कितने, यानी वो स्पीड उसका बता सकते हैं। इसी के क्या प्रूव होता है कि बीच वाले सारे स्कंद उस रूप परिणमित होते होते चले जाते हैं, ख्याल है? यही प्रूव करना है अपने को, बाकी दूसरे वो साइंस को नहीं, साइंस भी इसकी पुष्टि करते क्योंकि हमने साइंस पढ़ा है इसलिए उसके दृष्टांत से बता रहे हैं, ख्याल है?
थोड़ा हमें विश्वास होता है, दूसरा कुछ नहीं है, ये तो हमने जिनेन्द्र भगवान ने बताई हुई बात ही सच्ची है, साइंस कौन सी बात है, लेकिन उससे हम परिचित है तो परिचित उदाहरणों के माध्यम से ये हमको कंफर्म करना है। अपना मूल क्या रह गया कि जे शब्द वर्गनाना परमाणु पड़िया छे तेनु परिणमन रूप कार्य छे, अरे आजे होठ हले छे तेना कारणे आवाज निकले छे एम पण नथी, तो ते जीवनु कार्य तो केम होय, यहां कितने अभाव बताए, कौन बता पाएगा कितने अभाव बताए? हाँ बोलो बहन। हाँ अन्योन्य अभाव और दूसरा अत्यंत अभाव, तो अब अन्योन्य अभाव किसमें किसमें लगाया? दो पुद्गल परमाणु के वर्तमान अवस्था में, बहुत अच्छा। और अत्यंत अभाव जीव और शब्दों में। हाँ ये बस ये पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग चलना चाहिए, तो हमने ये सिद्धांत क्यों सीखे हैं कि जो गुरुदेव बात बता रहे हैं कि वो वास्तविक बराबर है, ये हमें कंफर्म होना चाहिए ना, हम ऐसा नहीं हाँ गुरुदेव कह दू तो आपने मानवू पड़े, ऐसा मानने वाले लोग हैं? गुरुदेव का निषेध नहीं है लेकिन वो मान्यता वाले कैसे हैं? उन्होंने करना नहीं, वो कभी बढ़ाया नहीं है, तुम कौन से पढ़ाने वाले हो, तो आप गुरुदेव को अपमान कर रहे हैं, ऐसा बोलने वाले निकले? यानी वो क्या कह रहे क्या नहीं वो नहीं सुनने का, वो कभी समझने का नहीं, और बस तो ये तो ब्लाइंड फॉलोअर हो गए, हमें वैसा नहीं बनना।
अभी इस वक्त वो बात निकली थी ना, वो सोनगढ़ से बहुत सारी ब्रह्मचारी बहने आई थी, तो मैंने जब कहा था गुरुदेव ने धवला भी चलाए थे, उन्होंने दो बार लिए थे ऐसा कहा उन्होंने, वहाँ 8 या 9 भाग तक उन्होंने चलाया था, पहले जाहिर में लिए थे उन्होंने, यानी उसके प्रत्यक्ष वो सुनने वाले वहां बैठे थे।
चलो ठीक है, मैं यही चाहता हूं कि हम जो कुछ पढ़ेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे तो हमारा उपयोग सही जगह लग रहा है या कोई गलत जगह लग रहा है। हमें हमारी कोई भी बात है वो फर्म होती जाएगी तो ही हमारा श्रद्धा गुण बराबर काम करेगा। क्या ऐसे कोई चुटकी मार के वो तो एक समय में चित या एक समय में पट, वो तो कहने की बात है, सम्यक या मिथ्यात्व। अरे वो मिथ्यात्व से सम्यक में आने में असंख्यात समय लगते हैं। क्यों? ये तो द्रव्यानियों कहेगा चिटमंग चितपट होता है वगैरह। ये हम बार बार सोचते हैं ना, तो वो यहाँ पढ़ते पढ़ते हमको याद आना चाहिए कि अरे भाई यहाँ कह रहे तो सही, पर ये किस आधार पे कह रहे हैं ऐसा। हाँ बराबर, हम उनकी परीक्षा नहीं लेना चाहते, हम हमारे मान्यता की परीक्षा कर रही है हमें। तू संयोग नेज मात्र देखे छे तेथी जीव बोले छे एम प्रत्यक्ष देखाय छे एम कहे छे पन एम छे नहीं। क्योंकि हमें निमित्त ऊपर संयोग पर ही अनादि से दृष्टि चिटकी हुई है। क्यों? कि वैसे हमारी आदत हो गई ना निमित्त के ऊपर ध्यान देने की। और क्या कह रहे तुम्हारे संयोग की तरफ देख देख कर हम कहेंगे ऐसा? भाई आए वितराग शासन मा तो वाते वाते दुनियाती फेर छे, जीवने अजीव बे तत्वोज स्वरूप थी भिन्न भिन्न छे। तो पछी जीव अजीव तत्व नु शू करे, पन जीव अजीव नी काई करे छे एम छेज नहीं। ये अभी अपना कौन सा विषय चला था मोक्ष मार्ग प्रकाशक? जीव अजीव। ये सहज ऐसा होता है। यहां तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि दोनों ही तत्व भिन्न भिन्न है फिर भी वह एक दूसरे रूप है ऐसा यह जीव मान रहे। परंतु प्रश्न है वो जीव तत्व आश्रय तत्व ने बंध तत्व ने करे छे एम तो छे ने। ये तो सिर्फ अपने को समझाने के लिए ये किसी ने प्रश्न, यानी हमारे मेरे हिसाब से राम जी भाई ने प्रश्न पूछा होगा।
ऐसा प्रश्न क्यों उठाया होगा? आश्रय तत्व और बंध तत्व तो करता है ना, करता है ना, ऐसा क्यों पूछा है? हाँ हाँ, गाथा कौन सी चल रही है?
निर्जरा तत्व।
निर्जरा, ये जीव वो भाव कर रहा है, सुख दुख को भोग रहा है करे ना, तो जीव तो राग करता ही नहीं है, वो अपेक्षा यहाँ नहीं है। इसलिए पूछा है कि आश्रय तो कर रहा है ना, क्योंकि ये समझाने कौन सी बात करे कि उसको आश्रय है पर्याय में, तो वो आश्रय कर रहा है, ज्ञानी भी कर रहा है, फिर भी उसकी निर्जरा है, ये बात यहाँ चल रही है। इसलिए प्रश्नकार ने क्या पूछा? अरे वो आश्रय और बंध तत्व तो उसका तो करता है कि नहीं है, ये गाथा की अपेक्षा प्रश्न आया है।
और ये भी बात है ना उसके साथ साथ, ये जीव तत्व और अजीव तत्व तो भिन्न भिन्न है, लेकिन ये आश्रय तत्व और जीव बंध तत्व है वह तो जीव की पर्याय तत्व है ना, तो वो तो करेगा कि नहीं, अपनी पर्याय तो करेगा कि नहीं, ऐसा पूछ रहे।
यानी वहां भी हम देखते हैं ना, वो नहीं जीव नहीं करता ऐसा भी कहेंगे, किसी ने ऐसे करेंगे जीव करता है, जैसे हम कर्तृ ने अकर्तृ ने देखे थे तो रंगरेजनी माफक ऐसा वहां उदाहरण भी दिया था, रंगारी जैसा रंग करता है वैसे वो ज्ञानी भी, क्योंकि नए तो ज्ञानी के होते हैं ना, तो वो भी अपने राग का करता है कहा है, वहां उसको भोक्ता भी कहा, और एक ने इसे अभोक्ता और अकर्ता भी कहते हैं। तो ऐसे यहाँ कहा, यहाँ आश्रय बंध का करता तो है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ वो करने वाला है और फिर भी उसकी निर्जरा चल रही, ये बात हो रही है, इसलिए ये प्रश्न इस रूप से पूछा है। नहीं तो वो जीव तत्व अलग ही है और अन्य तत्व अलग ही है, ये तो हम जानते हैं,
लेकिन वहां तो अत्यंत भिन्न दो तत्वों की बात थी,
वो निश्चय की बात हो
द्रव्य है ना, वो दोनों द्रव्य तत्व है ना दोनों, तो ये तो पर्याय जो है भाव आश्रय और भाव बंध, ये तो जीव के है ना, तो वो तो करता होगा कि नहीं, ऐसा पूछ रहे। देखो देखो क्या कहते, परंतु प्रश्न पूछ रहा हूं, जीव तत्व आश्रय तत्व ने बंध तत्व ने करे, जीव तत्व आश्रय तत्व ने बंध तत्व ने करे छे एम छे, एम तो छे ने, क्योंकि ए जुदी बात छे, ए तो जीवनी पर्यायनी वात छे, आश्रय तत्व ना परिणाम જીવની પર્યાયમાં થાય છે ને તેથી જીવ કરે છે એમ કહ્યું. અભી એ બતાય તો કે તે જ્ઞાનીને પણ એ આશરો ભાવ છે, તે જીવનું પરિણમન છે, પરંતુ કર્મના નિમિત્તથી થાય છે માટે તેને પર કહ્યું છે. વળી રાગમાં જીવ પોતે અટક્યો છે તેથી બંધ તત્વ પણ જીવનું છે એમ કહ્યું છે. એ એક પહેલે કી બાત બતા રહે, બંધથી જુદો પાડી અબંધ તત્વમાં લઈ જવા માટે બંધને જીવ તત્વ કહ્યું છે. જેમ મોક્ષ તત્વ છે, સંવર નિર્જરા તત્વ છે, તેમ આશ્રવ બંધ પણ ભલે છે ક્ષણિક તો પણ તત્વ છે એમ દર્શાવ્યું છે. તેમાં એક ત્રિકાળી ધ્રુવ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા ઉપાધેય છે એમ દર્શાવ્યું છે. તેમાં તો ત્રિકાળી ધ્રુવ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા ઉપાધેય છે, બાકી સાતે તત્વ ક્ષણ વિનાશી આશ્રય કરવા યોગ્ય નહીં હોવાથી હેય છે. આવું સમ્યક શ્રદ્ધાન જેને થયું છે તે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, અને રાગાદિક ભાવો નહીં હોવાથી આગામી બંધ કર્યા વિના જ વેદનમાં આવતા જે તે સુખ દુઃખના ભોગના ભાવ નિર્જરી જાય છે અને તે જ યથાર્થમાં નિર્જરા છે. માટે સમ્યક દ્રષ્ટિને પરદ્રવ્ય ભોગવતા નિર્જરા થાય છે. જુઓ આ પંડિત શ્રી જયચંદજીએ ભાવાર્થ કહ્યો. પહેલાની ગાથામાં જ્ઞાનીને દ્રવ્ય નિર્જરાનું કથન કહ્યું હતું અને આ ગાથામાં ભાવ નિર્જરા કહી છે. ઇતિ. હવે હમ કલશ પડ લેતે હૈ.
20 પૃષ્ઠ પર.
અનુષ્ટુપ.
તજ્ઞાનસ્યૈવ સામર્થ્યં વિરાગસ્યૈવ વાકિલ યત્કોપિ કર્મ વિકર્મ ભુંજાનોપિ ન બધ્યતે. શ્લોકાંત. કિલેને ખરેખર તત સામર્થ્યં, તે સામર્થ્ય કૈસા હૈ, આશ્ચર્યકારક સામર્થ્ય. અભી જો હમને દેખા થા ના ભોગતે હુએ ભી ઉસકી નિર્જરા ચલ રહી હૈ, આશ્ચર્યકારક સામર્થ્ય. જ્ઞાનસ્ય એવ, જ્ઞાનનું જ છે, વા અથવા વિરાગસ્ય એવ, વિરાગનું જ છે. વિરાગ કા અર્થ હમને ક્યાં દેખા તા પહેલે, એ રાગ સે ભેદ જ્ઞાન હોના ઉસકો વિરાગ કહા તા. અભી પર્યાય મેં રાગ હૈ પરંતુ ઉસકા સ્વામિત્વ નહીં હૈ, ઉસમે અપનત્વ નહીં હૈ. હમને દેખા તા પહેલે, મેં પહેલે વો વિરાગી હોકર ભી કી બાત કી થી વહાં પર, યે બાત આઈ થી. यानी वीतराग नहीं कहा था, विराग कहा था उसको. वीतराग में तो राग की उत्पत्ति ही नहीं है, और विराग में अभी उस राग के साथ एकत्व तो बुद्धि नहीं है. तो कहते ज्ञान नुच्छे अथवा विराग नुच्छे, यत के कह अपी, कोई सम्य दृष्टि जीव, यानी कोई जीव, कोई जीव यानी कौन सा, कोई सम्य दृष्टि जीव. कर्म भुंजान अपी, कर्म ने भोगवतो छतो, એને કર્મ કા ભોગ કરતે હુએ ભી, વો ચાલુ વર્તમાન લ્યા, ભુંજાના આપીને ભોગ કરતા હુઆ ભી, યા લિખા ના કર્મને ભોગવ તો છતો, કર્મ ભી ન બધ્યતે, કર્મોથી બંધાતો નથી. નહીં તો પહેલે મેં પહેલે અમને રૂલ ક્યાં દેખા તા, કે કર્મ કો ભોગતા હૈ ઓર વહાં ઉસકે રાગ દ્વેષ યાની વો એકત્વ બુદ્ધિ આદિ વો સબ ચલતા હૈ, તો નયા બંધ ફિર હોતા હૈ, તો વો ફિર ભોગના ઓર ફિર નયા બંધ હોના, તો વહાં વો ઉસકી નિર્જરા નહીં ગિનને મેં આતી. ઉદય હોતા હૈ નયા બંધ હોતા હૈ, ઉદય હોતા હૈ બંધ હોતા હૈ, યે બાત ચલતી રહેતી હૈ. જ્ઞાની કે ક્યા હૈ, વો ઉદય હૈ ઓર વહાં ઉસકે ભાવ ભી વૈસે હુએ હૈ, પરંતુ વો જો રાગ ભાવ હૈ વો મિથ્યાત્વ વાલે નહીં હૈ, વો સ્વામિત્વ વાલા રાગ નહીં હૈ, ઇસલિયે રાગ હોકર નિકલ જાતા હૈ, યાને કર્મ કા ઉદય હોકર છૂટ જાતા હૈ. તો કર્મ કા ઉદય હોકર છૂટ ગયા ઓર નયા બંધ નહીં હુઆ, તો ક્યાં હુઆ, ઉસકી અકેલે નિર્જરા હુઈ. જબ નિર્જરા કે સાથ નયા બંધ ભી હોતા થા, તો વો નહીં કે બરાબર થા. અબ નિર્જરા તો હો રહી હૈ, વૈસે ભાવ ભી હો રહે, ભોગને કે ભાવ ભી હૈ, યા કોઈ શોક વાલા કોઈ પ્રસંગ બને તો જ્ઞાની શોક ભી કરતા હૈ, પરંતુ ઉસકે નયા બંધ નહીં હૈ. તો ક્યાં હુઆ, વો શોક વાલી વો તો નિકલ ગયે, हम कहते ना फोड़ी हो गए तो क्या करते हैं, हम उसको छेद देते तो अंदर का निकल जाता है, तो निकला ना वो, अच्छा हुआ ना। तो ऐसे इसके भाव में भी वो जो कुछ भाव में जो था अशुद्ध वो भी निकल गई, ऐसा कहते हैं, वो भाव की भी निर्जरा हो गई। तो कहते हैं खरेखर ते आश्चर्यकारक सामर्थ्य ज्ञाननुच छे अथवा विरागनुच छे। वो विराग भी क्यों हुआ है, भेद ज्ञान के बल से वो विरागी हुआ है कि कोई समय दृष्टि जीव कर्म ने भोगवतो छतो कर्मोथी बंधातो नथी। अज्ञानी ने ते आश्चर्य उपजावे छे अने ज्ञानी तेने यथार्थ जाने छे। अज्ञानी के तो लगता है रे ये भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों तो उसकी वहाँ कहाँ दृष्टि जाती है, अरे वो इतना भोग भोग रहा है और फिर भी उसको निर्भोगी कहा है, ऐसी बात आती है ना शास्त्र में, तो उसको उसका आश्चर्य लगता है, उसको लगता है ये तो पार्शलिटी है, ज्ञानी वही भाव करे और उसको तो निर्जरा चल रही है और हमें तो बंदे ही बंदे हैं। अब इस बात को फिर स्वामी जी बताएंगे।
पृष्ठ क्रमांक 30 पर हम आए फिर सुबह।
हाँ।
अवे अग्रणी गाथावनी सूचना रूप श्लोक कहे छे, यानी यहाँ आगे जो 195 नंबर की जो गाथा आएगी उसमें कौन सा विषय आएगा उसकी यहाँ जस्ट झलक देते हैं। किल इटले खरेखर तत् सामर्थ्यम ते सामर्थ्य ज्ञानस्य एव ज्ञाननुज छे वा अथवा विरागस्य एव विरागनुज छे यत के कह अपि, इटले कोई सम्यक दृष्टि जीव कर्म भुंजानः अपि कर्मणे भोगवतो छतो कर्म भी न बध्यते कर्मोति बंधातो नथि। शू कहे छे के सम्यक दृष्टि जीव कर्मणे भोगवतो हुआ छता कर्मोति बंधातो नथि, भारे अचरजनी वात पन एमज छे। आहा ज्ञानी ने अंतर में जे शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा आश्रय ज्ञान ने वैराग्य प्रकट थया छे तेनु कोई एवं आश्चर्यकारी अद्भुत सामर्थ्य छे के ज्ञानी कर्म ने भोगो तो हुआ छता तेमा मोह भाव ने पामतो नथी अने तेथी जेने नवा कर्म बंधाता नथी। अहीं ज्ञान एटले क्षपक्षम ज्ञान नी वात नथी अने वैराग्य एटले स्त्री कुटुंब परिवार ने छोड़ीने वैरागी थई जाए छे ए वैराग्य नी वात नथी। ये मैंने वहां बताया था ना बैरागी, तो वो ये बात नहीं है। ज्ञान एटले त्रिकाणी शुद्ध पूर्ण आनंद नो नाथ प्रभु पूरण स्वरूप जे आत्मा तेनु ज्ञान ने वैराग्य कहता जेमा अशुद्धता नो एटले राग नो अभाव थयो छे ते वैराग्य छे। समकीति ने आवा ज्ञान वैराग्य नी आश्चर्यकारी शक्ति प्रकट थई होय छे जेना कारणे ते कर्म ने भोगवा छता कर्म थी बंधातो नथी। जेम कमळाना रोग पर कड़वी औषधि आपे छे पण ते औषधि नो रोगी ने प्रेम नथी तेम ज्ञानी ने कमजोरी ना कारणे कर्म कहाँ आया कह रहे ज्ञानी ने कमजोरी ना कारणे भोगना परिणाम आवे छे अने तेनु एने वेदन होय छे पण एमा तेने रस अथवा रुचि नथी तेनो एने स्वामीपनानो भाव नथी अने तेथी ते कर्मने भोगवतो छता पण नवा कर्मोथी बंधातो नथी। एने प्रकट थयेला ज्ञान वैराग्यनुं एवुं ज अद्भुत सामर्थ्य छे। अज्ञानीने ते आश्चर्य उपजावे छे ज्यारे ज्ञानी तेने यथार्थ जाने छे। अगली गाथा अथ ज्ञान सामर्थ्यम दर्शयती।
ये ज्ञान का सामर्थ्य जो पहले बात आई थी ना वो तो आगे के जो सूचना रूप कलश था कि कौन सी गाथा आने वाली है, अब वो एक्चुअल सामर्थ्य यहाँ बता रहे हैं। अब ये ज्ञान नु सामर्थ्य बतावे छे। जह विषम अभुंजंतो वेजो पुरिषो न मरणम वयादि पोगलकम सुदयम तह भुंज दिनेव भज देनानि यथा विषम पुंजानो
वैद्यः पुरुषो न मरणमुपयामि पुद्गल कर्मण उदयम् तथा भुङ्क्ते नैव बध्यते ज्ञानी जम झेरणा उपभोगदीपन वैद्य जन मरतो नथि त्यम कर्म उदयो भोगवेपण ज्ञानी बन्धातो नथि जम झेरणा उपभोगदीपन वैद्य जन मरतो नथि त्यम कर्म उदयो भोगवेपण ज्ञानी बन्धातो नथि।
ये झेर का उपभोग कहा है ने, झेर खाने पर भी ऐसा
बारंबार।
देखो पहले हमने ये बात देखी थी कि जो पुराने कर्मों का उदय है उसको उदय स्थान भी कहे ना, तो उसको प्रत्यय भी कहा था, तो उसके कारण नया बंध भी होता है। पर उसके लिए एक कंडीशन थी कि उसके मोह राग द्वेष जुड़े हैं ना, जीव के मोह राग द्वेष कौन से, वो एकत्व बुद्धि वाले। यानी यहां तो राग होता है ज्ञानी को ये बात स्वीकार की है, वो राग वगैर वाला वो ज्ञानी नहीं लिया है, परंतु उसके राग का स्वामित्वपना नहीं है, ये बात यहाँ मुख्यता से ली है। तो जब यहाँ राग नहीं होता है कहते हैं तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं होता है, ये बात यहाँ मूल में स्वीकार की। यानी अज्ञानी के राग से वो नया बंध होगा और फिर ज्ञानी को कहेंगे उसका बंध ही नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं वो गाथार्थ पहले देखेंगे हम। यथा एने जैम वैद्य पुरुष, वैद्य पुरुष यानी डॉक्टर। आप जब दवा खाते हैं तो कभी कभी पेशेंट दौड़ते आते हैं हमारे पास, क्यों, उसमें लिखा है पॉइजन और नॉट टू बी टेकन विदाउट मेडिकल एडवाइस वगैरह वगैरह जो कुछ है, उनको लगता है ये कुछ पॉइजनस वाली दवाई है और डॉक्टर ने भूल से अपने को लिख के दी है। तो ये बात यहाँ क्या कहते हैं, जैम वैद्य पुरुष विषम उपभुंजाना, विषम यानी विष ने, विष जन जहर, उसको भोगो तो अर्थात खातो छतो, क्योंकि उसको मालूम है कितनी मात्रा में खानी है कैसी खानी है। हाँ तो कहते हैं मरणम न उपयाति, मरण पाप तो नथी।
यहाँ पेशेंट की बात नहीं है, डायरेक्ट डॉक्टर से ही कंसर्न है। हाँ।
यानी वो वैद्य स्वयं खाता है तो उसको पता है कैसे खाना क्या है। तथा तेम ज्ञानी पुद्गल कर्मणा, पुद्गल कर्मणा उदयम, उदय ने भूंगते एने भोगवे छे तो पण न एव बध्यते बंधातो नथी। यानी वो जहर खाने पर भी मरता नहीं है और ये भोग भोगने पर भी बंधाता नहीं है।
देखो यहाँ पर बात ऐसे कह रहे हैं, आपको बोलना है क्या, यहाँ जो वैद्य है डॉक्टर है वह विष खाता है फिर भी मरता नहीं है, क्यों नहीं मरता है उसकी बात आगे बताएंगे कि उसके पास ऐसी विद्या है कि वो विद्या का उपयोग करके वह जो विष है उसको निर्विष रूप बना देवे। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो हम टीका पढ़ेंगे तो जल्दी ख्याल में आएगा। जेम कोई विष वैद्य, वो वैद्य भी कैसा स्पेशलिस्ट है, विष वैद्य है। बीजाओना मरणनु कारण जे विष तेने भोगो तो छतोपन अमोघ, अमोघ एटले रामबाण विद्याना सामर्थ्य वडे विषनी शक्ति रोकाई गई होवाथी मरतो नथी। तेम अज्ञानियो ने रागादि भावोना सद्भाव थी बंधनु कारण कयू के जे पुद्गल कर्मनो उदय तेने ज्ञानी भोगो तो छतोपन अमोघ ज्ञानना सामर्थ्य द्वारा रागादि भावोनो अभाव हुआ, अभाव होता कर्मोदयनी शक्ति रोकाई गई हुआ थी बंधा तो नथी। यहाँ जो पहले हमने जो बात देखी थी कि ये जो पर पदार्थों को भोगोने का जो कोई काम चल रहा है कहो या जो कोई बात चल रही है उससे सम्यक ज्ञानी को बंध नहीं होता है, लेकिन मिथ्यात्वी को बंध होता है, उसकी निर्जरा नहीं होती, इसकी निर्जरा होती है। तो ये ऐसा क्यों, तो उसके पास ऐसी कोई विद्या है, तो कौन सी विद्या है? तो ज्ञानी अपने आत्मा को जैसा है वैसा जानता है, और उसको उस पर पदार्थों में राग बुद्धि नहीं, ये तो बात आ गई, तो ये उसकी विद्या है कहा, ज्ञान की विशेषता बताई। क्या कहा कि बंधनों कारण अज्ञानियों ने रागाधिमान सद्भावती बंधनों कारण जे तेने भोगो तो छतोपन अमोघ ज्ञान सामर्थ्य द्वारा, ये अमोघ ज्ञान जो है उसके सामर्थ्य के द्वारा वो रागादि भावों का अभाव हो गया है उसके, क्योंकि आत्मा में स्थिरता है ना, उसके कारण कर्मोदय की जो शक्ति है वो रुक गई है, इसके कारण उसको बंधा दो। अभी भावार्थ में और बताएंगे, देखो जैम वैद्य मंत्र तंत्र औषध आदि पोतानी विद्याना सामर्थ्य थी विषनी मरण करवानी शक्तिनो अभाव करे छे, तेथी विष खावा छता तेनु मरण थतु नथी, तेम ज्ञानी ने ज्ञाननु सामर्थ्य एवुं छे के कर्मोदयनी बंद करवानी शक्तिनो अभाव करे छे, अने तेथी कर्मना उदयने भोगववा छता ज्ञानी ने आगामी कर्म बंद थतो नथी। आ प्रमाणे सम्यक ज्ञाननु सामर्थ्य कहूं, ऊपर ज्ञान का सामर्थ्य बताऊं ऐसा लिखा ना, तो यहां कहते हैं ये तो उन्होंने एफर्मेटिव बात की, वहां क्या कहा था कि राग में राग नहीं है, नहीं की बात की, तो यहां है क्या? तो ज्ञान का सामर्थ्य ऐसा है, क्या है ज्ञान का सामर्थ्य कि अपने स्व को ही वो जानता है, और वो जानने में इतना लवलीन है कहो या तल्लीन है कहो, या उसमें उसकी इतनी अधिकता हो गई है कि ये बाकी के भावों में उसके कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, इसलिए कहते हैं।
तो ऊपर भी लिखा ना रागानी रागादि भाव नो अभाव होता, ये रागादि भाव जहाँ जहाँ लिखा है वो मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी वाले समझने, यानी रागादि के स्वामित्व वाले, क्योंकि यदि रागादि भाव का पूरा अभाव ही समझेंगे हम तो उसके भोगने का भाव कहाँ है?
हाँ।
समझे ना, क्योंकि ये भोगते हुए उसकी निर्जरा बताई है, वहाँ विष खाते हुए वैद्य लिया है, वैसे ये जो जैसे कोई शोक का परिणाम है या जो कोई अन्य जो भोगने के परिणाम है खाने पीने के परिणाम है वो होते हुए भी उसको बंद नहीं है, उसकी बात है, क्योंकि वो अपनी क्रिया नहीं मान रहा है उसके जो कुछ, क्योंकि उसको उसमें मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है ही नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग वाली अगर बात हम लेंगे इधर
नहीं, शुद्धोपयोग की बात उसका ज्ञान की परिणति भी चल रही है ना,
वो भेद ज्ञान उसको चल रहा है, यही उसके ज्ञान का सामर्थ्य है, अमोघ सामर्थ्य है कि जिसके द्वारा वो मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी का वो भाव उसको है ही नहीं है, इसलिए उसको नया बंध वहां नहीं है। ये निगलिजिबल जो कुछ बंध है उसको यहाँ बंध नहीं गिना है ना। हाँ,
यानी यहाँ तो जो संसार का कारण नहीं होता है ऐसे परिणामों से जो बंद होता है उसको निग्लिजिबल कहा है। यानी वहाँ मुख्यतः तो अनंत अनुबंधी के कारण से जो अनंत अनुबंध होता था कहो, या संसार का जो मूल कारण होता था वो है ही नहीं अभी। हाँ, अभी पेज नंबर 33 पर आते हैं हम। हवे ज्ञाननु सामर्थ्य बतावे छे, जेम कोई विषवैद्य बीजाओना मरणनु कारण जे विष तेने भोगवतो छतो पण अमोघ एटले केवुं, राम बाण विद्याना सामर्थ्य वडे विषनी शक्ति रोकाई गई होवाथी मरतो नथी। जो शुं कह्युं के विष छे ते सामान्यपणे बीजाओना मरणनु ज कारण छे, अर्थात जे विष्णु सेवन करे ते अवश्य मरण ने शरण थाय, परंतु विषवैद्य छे ते विष खाय छता मरतो नथी। केम? तो कहे छे के तेनी पासे अमोघ विद्यानु सामर्थ्य छे, जे वडे विषनी शक्ति रोकाई जाय छे, हणाई जाय छे, झेर खाय छता विषवैद्य मरे नहीं, केम के तेनी पासे झेर ने मारवानी एटले हनवानी रामबान सफल विद्यानी शक्ति होय छे। आ दाखलो कयो। हवे कहे छे तेम अज्ञानीओ ने रागादि भावना सद्भाव थी बंधनु कारण जे पुद्गल कर्मनो उदय, तेने ज्ञानी भोगो तो छतो, यानी वही रागादि भाव, ये कर्म का जो उदय है वो अज्ञानियों ने रागादि भावना सद्भाव दीन जे बंधनों कारण छे, ते पुद्गल कर्म नो उदय, वो पुद्गल कर्म का उदय जो है ए तेने ज्ञानी भोगो तो छतो पन अमोघ ज्ञान सामर्थ्य द्वारा रागादि भावनो अभाव होता एटले होईने कर्मोनी शक्ति हणाई गई हुआ थी बंधा तो नथी। यानी वो ज्ञानी है तो उसको जो मूल कारण था कर्म संसार का या लंबे काल का या ऐसा तीव्र अनुबंध होने वाले जो अनंत अनुबंधी वो नहीं हो गए अभाव हुआ छता अभाव होता कर्मोनी शक्ति रोकाई गई छे। जो पुद्गल कर्म नो उदय अज्ञानियों ने जो बंधनु कारण छे बंधनुज कारण छे, मैंने अज्ञानियों ने ज लिख पढ़ा। अच्छा केम के अज्ञानियों ने राग द्वेष मोहना भावोनो सद्भाव छे, परंतु ज्ञानी कर्मना उदय ने भोगवे छता ते कर्मथी बंधातो नथी। केम तो कहे छे के जेम वैद्य जन पासे विषनी शक्ति ने रोकनारी अमोघ विद्या होय छे, तेम ज्ञानी ने कर्मोदयनी शक्ति ने रोकनारू अमोघ ज्ञाननु सामर्थ्य होय छे। ज्ञानी ने अंतरज्ञान एटले भेदज्ञान प्रकट थयुं छे ने, ते भेदज्ञानना कारणे तेने राग द्वेष मोहना भावोनो सद्भाव नथी। ज्ञानी ने कर्मोदय ने भोगवामा उपादे बुद्धि के सुख बुद्धि नथी, तेथी ते कर्मोदय ने भोगो तो छतो कर्म थी बंधातो नथी। ये एक ख्याल में आ गई ना बात, बहुत आसान है। हाँ नहीं आवे तो पूछ लेना। हो जेने भोगनो अभिप्राय छे ए तो अज्ञानी छे, अने ते भोग भोगवता नियमथी बंधाय छे, केम के तेने राग द्वेष मोहनो सद्भाव छे। आई तो जेने भोगनो अभिप्राय नथी एवो ज्ञानी कर्मोदयने भोगवता तेने राग द्वेष मोहनो अभाव होवाथी बंधातो नथी, एम कहे छे। भोग भोगवे तोय बंधन थाय एम अहीं सिद्ध नथी करवुं। लोगों की दृष्टि वहां जाती है, इसलिए कहते हैं आई तो ज्ञानी ना ज्ञान ना ज्ञान नु सामर्थ्य विषय सिद्ध करवू छे। जो भोग भोगवाती बंध न थाय एम होय तो भोग ने छोड़ी ने मुनिपनु लेवानी शी जरूर, काई जरूर न पड़े। भाई भोगवानो भाव तो अशुभ भाव छे अने ते बंधनु ज कारण छे। જ્યાં શુભ ભાવ પણ બંધનું કારણ છે ત્યાં અશુભ ભાવ અશુભ ભાવ અબંધનું એટલે નિર્જરાનું કારણ કેમ હોય? તો અહીં કહે છે ને, અહીં કહ્યું છે ને,
યહાં તો કહા હૈ ઉસકે ભોગ નિર્જરા કે કારણ હૈ અભી અભી જો વાત કી ને ઉસકે લિયે કહેતે અહીં તો કહ્યું છે।
हा पण ए तो ज्ञानी ने भोगनी रुचि नथी, पण अंदर भगवान आत्माना आश्रय उत्पन्न निर्मळ आनंदनी रुचि जामी गई छे, तेथी एम कयुं छे। ज्ञानी ने रागनी रुचिनो अभाव अने स्वरूपनी रुचिनो सद्भाव थयो छे, अने ते कारणे तेने बंधनी शक्ति रोकाई गई छे। तेथी कयुं छे के ज्ञानी कर्मोदय ने भोगो तो छतो रागादि नो अभाव हुआ थी कर्मो थी बंधा तो नथी। बावत जेम वैद्य मंत्र तंत्र औषध आदि पोतानी विद्याना सामर्थ्य थी विषनी मरण करवानी शक्ति नो अभाव करे छे, तेथी विष खावा छता तेनु मरण थतु नथी, तेम ज्ञानी ने ज्ञान नु सामर्थ्य एवुं छे के कर्मोदयनी बंध करवानी शक्तिनो अभाव करे छे, ते अने तेनी तेथी कर्मना उदयने भोगवा छता ज्ञानी ने आगामी कर्म बंद थतो नथी। आहा जो आ केवू दृष्टांत आप्युं छे, कहे छे वैद्य पोताना मंत्र तंत्र आदि सिद्धिओना सामर्थ्य वडे झेरमां रहेली मरण निपजावानी शक्तिनो नाश करे छे अने तेथी झेर खावा छता तेनू मरण थतुं नथी। आथी एम न समजवुं के झेर खावाथी हर कोई ने मरण न थाय, आ तो वैद्य ने जे शक्ति विशेष प्रकट थई छे एवो प्रभाव अहीं दर्शायवो छे। તેમ જ્ઞાનીને અંતરદૃષ્ટિ વડે એવી જ્ઞાનની શક્તિ વિશેષ પ્રકટ થઈ છે કે કર્મોદયની નવીન બંધ કરવાની શક્તિનો તે અભાવ કરી દે છે। જ્ઞાનીને ભોગ પ્રતિહે બુદ્ધિ છે, જે વડે તે કર્મોદયની બંધ કરવાની શક્તિનો નાશ કરે છે। તેથી કર્મના ઉદયને ભોગવવા છતાં ज्ञानी ने राग द्वेष मोह नो अभाव हुआ थी नवीन कर्म बंद थतो नथी। त्यारे कोई अज्ञानी कहे छे के जो ज्ञानी नो भोग निर्जरा नो हेतु छे, आवी निरंकुश भोगनी वात गजब छे ने। एने ऑब्जेक्शन लेने वाले कोई भी पॉइंट पे कैसा भी ऑब्जेक्शन लेंगे, भाई आ तो भगवान कुंदकुंदा आचार्य एम कहे छे, आ कई अपेक्षा वात छे ते यथार्थ समझवी जोईए। શું ભોગ કરવો એવો એનો અર્થ એટલે અભિપ્રાય છે? જ્ઞાનીને ભોગમાં નિર્જરા થાય છે એ તો બીજી અપેક્ષાથી વાત છે। જ્ઞાનીને ભોગનો વિકલ્પ આવે છે પણ ભોગમાં એને ઉપાધેય બુદ્ધિ નથી, ભોગતી મને હિત છે સુખ છે એવી બુદ્ધિ તેને ચાલી ગઈ છે। ધર્મીને જે રાગની રૂચિ નથી, રાગમાં એકત્વ નથી, તે એને પ્રકટ થયેલા જ્ઞાનનું એટલે ભેદ જ્ઞાનનું સામર્થ્ય છે। યહાં યે બતાતે કે ઇસકો જો રાગ ખતમ હો ગયા હૈ ઉસકા મૂળ કારણ તો ઉસકા ભેદ જ્ઞાન હૈ, જ્ઞાન કા સામર્થ્ય બઢ ગયા ના, અને તે જ્ઞાનના મહા આશ્ચર્યકારી સામર્થ્ય વડે તે કર્મોદયની બંધ કરવાની શક્તિને હણી નાખે છે। वास्तव में वो उसमें रुचि नहीं रखता है इसलिए कर्म बंद नहीं होता है, इसलिए वो ज्ञान के सामर्थ्य को महत्व देके उसमें ऐसी शक्ति तैयार हो गई कर्म ने रोका हुई है, ये कहना चाहते हैं। यहाँ तो बस बिल्कुल निमित्त का ही कथन है, ऐसे कोई ऐसा परद्रव्य को कोई उसका परिणमन रुकावे ऐसी शक्ति किसी में नहीं होगी, इसलिए कह रहे हैं। તે નીચે સે તીસરી લાઈન પડનો, તે જ્ઞાનના મહા આશ્ચર્યકારી સામર્થ્ય વડે તે કર્મોદયની બંધ કરવાની શક્તિને હણી નાખે છે, મતલબ કે જ્ઞાનીને ભોગમાં ઉપાધેયપનાની બુદ્ધિ નહીં હોવાથી ભોગનો ભાવ નવો બંધ કર્યા વિના જ જરી જાય છે। જ્યારે જ્ઞાની ભોગના ભાવને ઉપાધેય બુદ્ધિથી વેદે છે તેથી અવશ્ય નવીન કર્મથી બંધાય છે। अभी यहीं हम रुकते हैं, इसका ही उदाहरण उन्होंने दिया है, वो हमेशा देते थे, कल पढ़ेंगे उसको। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकण मो सदा देत हो।